امیر حسین، ڈاکٹر صاحب ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، انجینئر جناب دانشور مرحومہ کے بھائی۔
تعزیت درج کرتا ہوں جناب انجینئر۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کے ہاتھ سے بچا نہیں جا سکتا۔
امیر حسین، اس لیے کہ اطلاع اور مرنے کی گواہی صرف قریبی رشتہ داروں کو دی جاتی ہے، اس لیے تم کو زحمت دی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے ہمارا کام جلد از جلد کروا دیں گے۔
مرنے کی وجہ اور مرنے کی گواہی دونوں ٹائپ ہو رہی ہیں، چار پانچ منٹ میں آفس سے لے لینا، میں دستخط کر دوں گا، ادارے کا سربراہ دستخط کر دے گا، نمبر لگ جائے گا، مسئلہ ختم، پھر میت کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں۔
جی شکریہ، اپنی نازوں سے پلی بہن کا جنازہ تحویل میں لے لوں گا۔ ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کس طرح مری ہے۔
اللہ تم کو صبر عطا کرے، اور جناب انجینئر کو بھی۔
مجھے نہیں لگتا کہ اس نے خودکشی کی ہوگی۔ حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو مار لے؟
حقیقت سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ جتنا ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، وہ صدمے کی حالت میں تھی، اور صدمہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی تیز دھار والا چاقو ہو۔ افسوس کے ساتھ ہم ایسے لوگوں سے روز سروکار رکھتے ہیں جن کی باتوں سے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ورنہ بہت سی چیزیں سمجھ لی جاتی ہیں کہ رد عمل کیا ہوگا ہر عکس جنم کے ساتھ سامنے نہیں ہوتا۔ صرف کہتے ہیں اس کی زندگی کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے۔
آپ کی میڈیکل رپورٹ کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟
خودکشی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ کسی بھی قسم کے کوئی اثرات اس کے جسم پر نہیں ملے ہیں۔ اطمینان رکھیں، اگر کوئی شک و شبہ ہوتا تو ہم اس کی خودکشی کی تصدیق نہ کرتے۔
آخر کیوں؟
اے کاش میں تمہاری مدد کر سکتا۔ اس کیوں کا جواب تم خود ہی ڈھونڈ لو۔
امیر حسین، مجھے لگتا ہے درخواست تیار ہو گئی ہے، ہم چلتے ہیں، دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے۔
میں حاضر ہوں۔
گلے پر رسی کے زخم کے نشان دیکھ کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہشید نے اپنے آپ کو پھانسی دے کر مار ڈالا۔ ابتدائی رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ خودکشی ہے۔
امیر حسین،
مہشید جان،
مت رو میری بہن، سنبھالی خود کو، خدا سب بہتر کرے۔
میرا کیا ہوگا جان؟ مہشید ہمیں کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ مہشید میری بہن،
مت روئے میری بہن، اللہ کی یہی رضا تھی، مت روئے، صبر رکھیں، بس کریں، خاموش ہو جائیں، مت روئے میری بہن۔
مہشید میری جان، میری بچی، مہشید اللہ
بہت شکریہ جناب آپ کا۔
तुम अकेले उस घर में क्या कर रहे हो?
डरो मत, मैं खुद को नहीं मारने वाला।
अमीर हुसैन, अम्मी अब्बू तुम्हारे लिए परेशान हैं। यहाँ आ जाओ।
नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ।
अमीर हुसैन, मेरी बात मानो, घर आ जाओ तुम।
मारुख, मैं अभी वहां आ जाऊं लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है मैं यहीं रहूं।
अब्बू को तुमसे काम है, सुन रहे हो?
जी।
जल्दी से आ जाओ, कोई भी यहाँ नहीं है, सब चले गए हैं।
ठीक है, आ रहा हूँ, खुदा हाफिज।
तुम किस चीज की वजह से ऐसा कर रहे हो? अपनी ट्रेनिंग पे वापस क्यों नहीं जा रहे? सोगर, तुम्हारी छुट्टी भी खत्म हो चुकी है।
मैं जाना नहीं चाहता, यानी अभी जाऊंगा लेकिन उसके बाद। खालत से कह दूंगा जाएं और कमांडिंग ऑफिसर से बात करें, जानता हूं कमांडिंग ऑफिसर फोन कर सकता
है। अगर तुम्हारा मतलब माँ और मेरी तन्हाई के बारे में है तो तुम्हें आदर डालनी होगी, वो तो वापस नहीं आएगी। तुम भी अपनी जिंदगी में लौट जाओ।
काम है, गजाला से काम है, इंतजार कर रहा हूं कि उससे मिलूं।
उससे तुम्हें क्या काम है?
हजार सवाल है मेरे दिमाग में, मैं नहीं जानता आपके पास कोई है या नहीं। आखिरकार दिन रात ये दोनों एक साथ रहती थी, मैं चाहता हूं जान सकूं कि महशिद के साथ क्या हुआ है।
गजाला नहीं है।
कहां है?
अपने घर वालों के साथ सफर पे हुई है, 10-15 दिन के लिए। अगर वो यहाँ होती तो मैयत के मरासिम में जरूर आती।
अच्छा, कब आएगी?
नहीं मालूम।
क्या मालूम? मुझे क्या मालूम और किस तरह जाऊं, कहां जाऊं? अभी यहां हूं तो पागल हो रहा हूं, वहां क्या होगा?
पागलपन का इलाज गजारा नहीं कर सकती, यानी बहुत बुरा है अगर इलाज करे तो।
क्यों?
अगर गजाला कुछ नहीं जानती तो हम भी कुछ नहीं जानते। हाँ, अगर गजाला कुछ जानती है जो हम नहीं जानते, जिसके मायने ये है कि महशीद इस कदर तुम पर, मुझ पर, अपनी माँ पर इत्माद नहीं करती कि जो उसके दिल में है कह दे।
अच्छा, मगर आपके दिल में जो होता है वो मुझसे, महशीद से, अम्मी से?
अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किससे बताऊंगा? मेरे बेटा, तुमसे ज्यादा राजदार मेरा कोई नहीं है।
अक्सर औकात जब पाऊं जिंदगी और मौत के दरमियान हो, इस तरह मेरी नजर में आसान नहीं है कि वो कोई इरादा कर ले और खुद को खलास कर दे।
जिसका जो दिल चाहे वो कहे, लेकिन मुझे कबूल नहीं कि महशी जिंदगी और मौत के दरमियान इंतखाब करना चाहती थी।
यहां तक कि एक रात कब्ल इतने जोको शौक से अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रही थी जैसे वो 100 साल जिंदा रहेगी। उसका UCL दरख्वास्त फॉर्म भी आ गया था, कह रही थी इसको भेज दूंगी। आप नाराज तो नहीं होंगी?
जाना चाहती थी?
उसका दिल चाहता था कि डॉक्टरेट करे। वो कहती थी वकालत की डिग्री भी बेहतर है, मगर अदालतों के इतने चक्कर काटने की मुझ में हिम्मत नहीं।
वो इस काम में नहीं आई थी, वो भी 1 महीने पहले। तुमने देखा वो नाराज हो गई और तुमसे उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा।
नहीं, नाराज नहीं हूं। जरूरी ना था हमें बताना। अहम यह है कि 1000 तरीके उसके दिमाग में थे। वो इंसान जो अपनी जिंदगी जी रहा और उसके उसूल तोड़ दे, फिर किस चीज के लिए खुद को मार लेता है?
हमारे सवाल के जवाब तुम सवाल ही में दे रहे हो।
دعوت دیتے ہیں کہ اس وقت کی خبریں توجہ فرمائیں. تبریز کی ہنگامہ آرائی ختم ہو گئی. سرخ اور سیاہ پرچم کے نیچے کی قسم کھائی ہوئی ایرانی اور ایران کے دشمن لوٹ گئے, اور یہ کہ ملک ہماری نظر میں تمدن کا بڑا آستانہ ہے. بغیر کسی وجہ کے بغض اور کینہ ان دشمنوں کی سرحد پر ہوا ہے. جو بھی ان کی صلاحیت اور بجلی جیسی پورتی کاموں میں ملت ایران کے لیے رہبری کرتا ہو, اعلیٰ حضرت جمائیوں محمد رضا شاہ پہلوی آریہ میں شہنشاہ ایران نہیں رکھتا ہو. اور چاہتے ہیں کہ اس لوہے جیسی ملت کے ارادے کو جو کئی صدیوں پرانی ہے آگے بڑھنے سے روک دیں, یہی باطل کا ارادہ ہے. کچھ اطلاع خبروں میں تقریباً ظہر تک کچھ ان خرابیوں کے بارے میں جو عوامل باہر ملک کی سرحد سے آ رہے ہیں, وہ تبریز شہر کو فساد کی طرف کھینچ رہے ہیں. حکومتی اداروں پر حملے اور گاڑیوں کو آگ لگانا اور بینک میں ڈکیتی اور عام لوگوں کی لوٹ مار حکومت کی نظر میں ہے. اور بتا دیا گیا ہے کہ اس گروہ کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا جس کو خوش قسمتی سے شکست دے دی گئی ہے. جیسے کہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تبریز کے غیرت مند اور ہمت والے لوگوں کی مدد سے اور ملک کی فورس کے شہر میں داخلے سے
ایک گلاس اور پانی دو.
پاگل ہو گئے ہو؟
ہوا کیا ہے؟
یہ کیا بات تھی جو تم کینٹین میں سب کے سامنے کہہ رہے تھے؟
ہاں تو جھوٹ تو نہیں کہہ رہا تھا, ریڈیو سے نشر ہو رہا تھا.
ہاں تو مجھے اور تم کو کیا کرنا, اگر وہاں کوئی مخبر ہوتا تو؟ ویسے تو تم اپنا منہ نہیں کھولتے اور سب کے سامنے بلبل بن جاتے ہو.
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بحث مت کرو ہمایوں.
احمق آدمی, تمہارے لیے ہی کہہ رہا ہوں, کسی پریشانی میں نہ پھنس جاؤ. لوگ کتنی باتیں بنا رہے ہیں پتا ہے؟
کیا کہہ رہے ہیں؟
کہتے ہیں تم سے کورمے کی بو آ رہی ہے, اور کچھ کہتے ہیں سفارشی ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے ہزاروں تعلقات ہیں. کہتے ہیں کہ ٹریننگ سے چھٹی پہ جاتا ہے, اور کچھ کہتے ہیں طرح طرح کی سیاسی کتابیں پڑھتا ہے تاکہ فوج کو سیاست میں لے جائے اور پھر اس کو چھوڑ دے.
اچھا, وہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں.
تمہاری بہن کا معاملہ نہ ہو تو تمہیں مار دیتے.
وہ جو مارنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہمایوں.
علاقے کے جمادار اور ملک کے جمادار بھی تم سے اچھا کام کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو, پانی ڈالنا نہیں آتا. ہاں اگر ایک گھنٹے بعد یہاں آیا پتھر پتا دکھ گیا تو باورچی کو دوں گا, کوفتہ بنا کر حلق میں ڈال دے گا. اوئے وہاں کیا کر رہے ہو, پانی دے رہے ہو؟
جی جناب.
دانشور یہاں آؤ, جلدی آؤ. یہ داڑھی کیسی ہے تمہارے چہرے پر؟ ہاں تم سے پوچھ رہا ہوں.
جناب ان کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے, یہ سوچ
پہلے تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں
میں غمگین ہوں جناب.
غمگین ہو؟ یہ فوج ہے, یہ فوج ہے, سمجھ رہے ہو؟ تم بھی سپاہی ہو, پہلے سپاہی ہو اس کے بعد جو چاہے کرو. سپاہی ہمارے لیے اہم ہے. اب میں اس طرح کی کوئی بات نہ سنوں. کل صبح جب تم یہاں آؤ تو بہت صفائی کے ساتھ اپنی داڑھی پر 3 دفعہ بلیڈ پھیر کر آنا. ایک بال بھی دکھا تو سر مڈوا دوں گا, سمجھ گئے؟
جی جناب.
سمجھنا بھی چاہیے.
جی جناب.
تمہاری بلبل کی طرح بات کرنے کی وجہ سے کل اور آج یعنی 3-4 گھنٹے نگہبانی کرو گے پابندی کے ساتھ. کیا ہے, تماشا دیکھ رہے ہو؟ ہاں کیا گدھے کی طرح منہ دیکھ رہے ہو میرا؟ بیکار اور بکواس لوگ, چلو.
Thank you.
छोड़ो, अपना काम करो।
सुबह बखैर सिपाही, कैसे हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत है जनाब?
अरे तो तुम हो दानिश्वर?
जी जनाब, सिर्फ ड्यूटी पर था इसलिए बात नहीं की।
मुझे रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए रोका है, मुझे इजाजत नहीं है किसी को रिकॉर्ड में बुला लूं। तुम तो जानते हो सब शराइत तोड़ने के लिए ही तो होती हैं।
हमने किसी मुकर्रात को नहीं तोड़ा, तंबी की जा रही है ताकि तोड़ दें।
वापस आने के बाद तुमको नहीं देखा वरना ताजियत करता। खुदा तुम्हें सब्र दे। जब पता चला कि तुम क्यों गए हो तो अपनी फरमाइश पर पशिमान हुआ, मगर फिर कोई हल ही नहीं था कि बता दूं।
नहीं, आपकी किताबें खरीद ली हैं।
मैं शर्मिंदा हूं।
कोई बात नहीं, तबरेज में है?
वही, उसी जगह।
बंद थी?
कहां रखी?
वो जगह पुरसकून है, मुझे इत्मीनान है।
जुमेरात को तुम्हें तुम्हारे इंचार्ज से आधे दिन की छुट्टी मिल जाएगी, उन्हें जगह पे रख देना।
जरूर जरूर जगह बदल दूंगा, इससे पहले कोई आए मुझे जाना चाहिए।
ठीक है।
मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है।
राजबी, अपने पाँव मेरे जूते से बाहर निकालो, वरना तुम्हारी गर्दन में इसी हथियार से काट दूंगा। तुम्हारे कल को अंधेरा कर दूंगा मैं, खुदा की कसम। समझे?
ऐसा मत करो।
नहीं,
ऐसा मत करो।
बेगैरत नामर्द, गुम हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ। अब हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अमीर हुसैन हूँ। तबीयत ठीक है, तुम कैसी हो? नहीं भाई, सिर्फ आधे घंटे की छुट्टी ली है ताकि तुमको फ़ोन कर सकूँ। कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी हमारे आए? नहीं, बाबा काम पर जा रहे हैं, उसे कहें 2-3 हफ्ते काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, आराम उनके लिए बेहतर है, काम से दूर रहना ही अच्छा है। अम्मी को फ़ोन दो, कहाँ गई हैं? इमाम ज़्यादा सौले खलत के साथ? अच्छा इंसान है, मेरी तरफ से भी याद से सलाम कह देना। सुन रहा हूँ, बोलो। नहीं नहीं नहीं, तुम भी अपना ख्याल रखना, कोई काम तो नहीं? चलो रखता हूँ, खुदा हाफिज़।
₹300, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
तबीयत ठीक है आपकी?
आपकी तबीयत कैसी
है? सलामत रहिए।
बहुत शुक्रिया।
तुर्की जबान सीखी?
मैंने अब तक तुर्की जबान नहीं सीखी।
इंशाल्लाह सीख लोगे।
इंशाल्लाह।
ये लो, ये तुम्हारी अमानत है।
बहुत शुक्रिया।
बड़े इंजीनियर दानिश्वर को मेरा सलाम कहना, कहना इंशाल्लाह तशरीफ ले आए यहाँ ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुल्हन ले आए, फिर तुम यहाँ रुक जाओगे।
अभी हमारी ऐसी किस्मत
इंशाल्लाह।
आपका बड़ापन है, आपकी जगह तंग कर दी है, अज़ियत दी आपको, माफी चाहता हूँ।
कोई बात नहीं,
अपना ख्याल रखिएगा।
आप भी अपना ख्याल रखिएगा जनाब दानिश्वर।
जी जी, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अमीर हुसैन दानिश्वर, तुम हो?
जी।
चलो हमारे साथ।
क्यों?
चलो।
कहाँ?
जल्दी।
खैरियत?
बैठो। देखूं कहीं से दिख तो नहीं रहा।
तुम कौन हो?
क्यों अपना सर घुमा रहे हो?
मैं अपने सर को इसलिए घुमा रहा हूं ताकि कोई तो आए और मुझे बताए कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्या मजाक हो रहा है ये।
अब बदतमीजी से बात मत करना बच्चे, और आवाज ऊंची मत करना। ये बिल्कुल स्कूल की तरह है, बदतमीजी करोगे तो जूते खाओगे, समझे? नाम? मैंने पूछा नाम। क्या सकते में आ गए हो? मैंने पूछा नाम क्या है?
बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा जब तक मैं ये जान ना लूं कि कहां हूं और मुझे यहां क्यों लाए हैं।
तुम चाहते हो तुम्हारे वकील को बुलाऊं? ये शेल कंपनी है और मैं इसका इंचार्ज हूं। हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं इंजीनियर साहब।
अच्छा, फिर तो मुझे पहचानते हो।
क्या सोच रहे हो कि लॉटरी का टिकट निकल गया है, कि बस ऐसे ही किसी को भी यहां उठा कर ले आए? अलबत्ता तुम्हारा टिकट निकल गया है, क्योंकि मैं अपने साथियों से बिल्कुल अलग हूं, और अगर मैं तुम्हें दूसरों के हवाले कर दूं तो वो पहले तुम्हारी खाल उतारेंगे, फिर वो तुमसे बात करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें दूसरों के हवाले कर देता हूं, कैसा रहेगा? नाम?
दानिश्वर।
पूरा बताओ।
अमीर हुसैन दानिश्वर।
और बाप का नाम?
मोहम्मद। चले गए? चले गए?
तालीम?
मास्टर बायोकेमिस्ट्री।
किस पार्टी से ताल्लुक है?
जी,
मार्क्सिज्म या इस्लामी?
मैं किसी में भी नहीं हूं।
वो तो मैं भी जानता हूं। तुम सिर्फ एक बछड़े हो जिसका पेट ज्यादा भर गया है, सिर्फ यही? कब से छावनी में काम करवा रहे हो?
मैं?
तुम्हारे साथ एटमी मुताले में कौन शामिल है?
तुम्हारे साथ एटमी मामले में कौन कौन है, इस बात का क्या मतलब?
एटमी मुताला वही है जो तुम पढ़ रहे हो, ये देखो।
मैं किसी को नहीं जानता जनाब।
फिर ये सब क्या है?
किताबें हैं, मेरी अपनी है।
इसका क्या करते हो? किस तरह छावनी लेकर जाते हो, किस तरह रابطہ करते हो?
छावनी लेकर नहीं जा रहा था।
तबरेज में तुम्हारा ठिकाना है? फिर तुम इसका क्या करते?
मैं इसको पोस्ट के जरिए तहरान भेजना चाहता हूं।
अच्छा, तो तुम इसको तेहरान भेजना चाहते थे पोस्ट से?
जी।
इस तरह? किसने कहा तुमसे देखो?
जिन्होंने ये कागज के टुकड़े तुमको दिए वो समझते हैं कि मैं किसी पार्टी से वाबस्ता हूं।
सुनो लड़के, अगर मार नहीं रहा तो ये मत समझना कि जो मुंह में आएगा कहोगे। बाद वाले अफसर को कोई ताल्लुक नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है और तुम्हारी बहन का शौहर कौन है? बेहतर यही है कि जो तुमसे पूछा जाए सीधा जवाब दो। कितने लोग तुम्हारे साथ छावनी में काम किया करते हैं?
कोई भी नहीं।
तुम्हारा बाप अभी तक उस पार्टी के साथ सियासी राब्ता रखता है?
नहीं, मेरे वालिद किसी के साथ आना जाना नहीं रखते।
मुझसे झूठ ना बोलो, तुम उसी बाप की औलाद हो। 100 साल भी इंजीनियर रहे फिर भी काम खराब करोगे। फिलहाल तो उसका बेटा भी काम खराब करने वाला है, उसकी बेटी भी।
खामोश हो जाओ, जबान संभाल कर बात करो।
गलत जगह हाथ रख दिया है। ठीक कहा, तुम सोचते होगे तुम्हारी बहन ने किस वजह से खुदकुशी कर ली होगी।
बकवास बंद करो।
ले जाओ इसको। बाहर आओ, जल्दी करो, यहां बैठो, अपने हाथ सर पे रखो, हिलना मत, बैठे रहो।
हेलो मारुख, एक मिनट खलत को फोन दो। नहीं कुछ नहीं हुआ, एक मिनट खलत को फोन दो। खलत को एक मिनट फोन दो।
रुको खलत, आओ अमीर हुसैन है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? नहीं कुछ नहीं हुआ। देखें क्या आप मुझे तहरान ट्रांसफर करवा सकते हैं? हाँ, टेलीफोन पर आपको तफसील नहीं बता सकता। सिर्फ एक काम करें, मुझे तहरान मुंतकिल करवा दें। मेरी बात को समझने की कोशिश करो खलत, मैं आपको तफसील नहीं बता सकता, मेरी जिंदगी को बदतरीन खतरा है। कुछ भी करें कि मुझे मुंतकिल कर सकें, अब ट्रेनिंग के दिन ही कितने बाकी बचे हैं। हाँ ठीक है, कमांडर बदल गया है, लेकिन सेकंड कमांडर अभी नहीं बदला। सुनो,
आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। फोन पर नहीं बता सकता, दरअसल मेरा मसला नहीं है। अम्मी अबू और हम सब के लिए खतरा है। मुझे सिर्फ तैरान मुंतकिल करवा दें, आप ये कर सकते हैं। और हाँ, हाँ हेलो खलत, मेरे सारे सिक्के खत्म हो गए हैं। हेलो, इस काम को आप मेरी खातिर करें, नहीं यहाँ बिल्कुल मेरे रहने की जगह। हेलो खलत, हेलो हेलो,
कल रात को बुलाया था, तुम अभी आ रहे हो?
कल रात किसी काम में फंस गया था, इसलिए देर हो गई, माफी चाहता हूं।
अच्छा,
कल रात आ गया था, सुबह तक वहां था, छावनी के दरवाजे के पास, मुझे आने नहीं दिया।
अब ऐसी जगह भेजूंगा कि बाहर निकलना भूल जाओगे। अस्करी,
मैं चाहता हूं कि छावनी के कमांडर से मिलूं।
जब बाहर निकलोगे तो आराम से मिल लेना।
अच्छा, अभी मेरे लिए क्या हुक्म है?
तुम्हारे लिए तुम्हें सजा सुनाई जाती है, इसको सजा की जगह ले जाओ।
जेबें देखो, अपनी घड़ी, अपनी घड़ी। क्या पहली दफा आए हो? जो भी एक दफा इम्तिहान करता है वो हमारा हमेशा का ग्राहक बन जाता है। बड़े भाई, मेरे पीछे आओ। इसी तरह गाना और अच्छी आवाज निकालना, रोजाना 3 दफा। 1000 बार भी कहोगे दरवाजा नहीं खोलूंगा।
क्या कर रहे हो यहाँ?
यहाँ की सफाई सुथराई के लिए भेजा गया हूँ शहजादे। कहाँ रह गए थे? तुमसे बोल रहा हूँ।
सो जाओ भाई।
कल रात वापस क्यों नहीं आए?
मेहमान था।
झूठ मत बोलो।
हुमायूं, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे सोने दो।
कल दिन में छावनी के लिए नया कमांडर तारुफ कराया गया है।
कौन है?
नहीं जानता, मगर कहते हैं कि उससे भी ज्यादा जल्लाद है।
जिसका भी बाप हो, मैं तो चला जाऊंगा।
कह रहे हैं कि पासिंग आउट तक हमें यहीं रखेंगे। यकीन करो।
क्या तुम फिर अपनी तरफ से कह रहे हो?
बिल्कुल भी नहीं।
किसने कहा?
हवलदार ने।
सालार होगा
शायद।
इंसानों की तरह बात क्यों नहीं कर रहे?
तुमसे ही सीखा है। कहते हैं कि इसको तबरेज के हालात की वजह से भेजा है। हमें भी शायद तबरेज भेज दें।
क्यों?
मुझे क्या मालूम, मगर कह रहे हैं कि मार्शल लगा देंगे।
किसी से छावनी में बात मत करना।
क्यों?
सब जगह मुख पर घूम रहे हैं।
जाओ।
अच्छा, इंसान बनो। सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। अगर किसी से बातें करोगे तो तुम्हारे हाथ पांव बांध देंगे और अपना रास्ता साफ करेंगे।
तुम ये सब मुझसे कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा है सरमदी के साथ मत रहा करो। सुना है उसके दो चेहरे हैं। दोस्ती में कैसा वादा? किसने तुमसे कहा कि हमारे पीछे बातें करो?
क्या मतलब है?
मतलब ये कि मैं दिमाग से काम कर रहा हूँ। कोई भी गधा बनता है, मुझे मालूम हो जाता है, न यहाँ की न वहाँ की। दानिश्वर, मैं तुमको सब खबरें दे चुका हूँ। कल जब छुट्टी से वापस छावनी आए, बस यही खबर थी, और बाकी तो तुमने सब कुछ सुन ही लिया है।
मैं चाहता हूँ कि बस तुम्हारा दिमाग ठीक रहे। दिमाग ठीक है? अच्छा है।
ये टोपी तुम पहन लो।
हाँ, पहन ली है। जो होगा देख लेंगे। अभी मेरी नजर में तुम भी एक मुखबर हो।
बहुत मेहरबानी है आपकी।
आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
ये तो पूरा ही हो गया।